तारीख 6 जून दिन बृहस्पतिवार। नमस्कार भारत। सूडान में जारी संघर्ष में सत्ताधारी मिलिट्री काउंसिल ने विपक्ष के साथ बातचीत की अपील की। विपक्ष ने बातचीत का प्रस्ताव ठुकराया। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने पद से इस्तीफा दिया।
जो राज्य के जितने नेता हैं, इन्होंने कांग्रेस को बर्बाद करने का काम किया है। हम सब 8 से 10 लोग फैसला लेंगे। विखे पाटिल साहब का निर्णय अंतिम निर्णय होगा।
रोहित शर्मा के शतक के बदौलत दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने विश्व कप में जीत के साथ किया आगाज।
स्टार्ट टू फिनिश इंडिया का ही जोर चल रहा था। सुबह से ही पता चल गया था कि 50 ओवर के बाद इंडिया ही जीतेगा।
कार्यक्रम में दुनिया जहान भी होगा, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। सूडान में अर्धसैनिक बलों के कमांडर ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई का बचाव किया है और कहा है कि देश में अराजकता नहीं फैलने दी जाएगी। सुरक्षा बलों पर 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की हत्या का आरोप है। विपक्ष का दावा है कि नील नदी से 40 लोगों के शव निकाले गए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि वो राजधानी खारतूम से अपने गैर जरूरी स्टाफ को हटा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान रूस और चीन के बीच आगे की व्यापार और निवेश डील्स को लेकर एक पैकेज पर हस्ताक्षर हुए हैं। चीन के नेता और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज भी बातचीत जारी रहेगी। चीन और अमरीका के बीच शुरू हुए व्यापार युद्ध के बाद चीन और रूस के बीच संबंध गहरे हुए हैं। शी जिनपिंग ने पुतिन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया और कहा कि दोनों देशों के संबंध और मजबूत हो सकते हैं। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने कहा, पिछले साल हमने द्विपक्षीय वस्तुओं को कारोबार को लक्ष्य 100 अरब अमरीकी डॉलर का रखा था। हमारी टीमों और हमारी सरकार की कोशिशों से हम इस आंकड़े को पार कर गए और 108 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गए हैं। और इस साल की पहली तिमाही में व्यापार भी बढ़ा है। ये पहले ही 3.4% से ज्यादा हो चुका है। ये थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। थाईलैंड में 5 साल पहले सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व करने वाले शख्स देश के पहले नागरिक प्रधानमंत्री बन गए हैं। रिटायर्ड जनरल प्रायुट चानोचा को संसद के 2 सदनों में 12 घंटे चली बहस के बाद हुए मतदान में चुना गया, लेकिन विपक्ष ने मतदान में धांधली का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार टनाटोन जोंग रोंग रानगिट को सभा में अपनी सीट तक पर नहीं बैठने दिया गया। घोषणा के बाद टनाटोन ने कहा कि देश में लोकतंत्र समर्थित आंदोलन को खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत करने की कसम उन्होंने खाई। उन्होंने कहा, मैं निराश हूँ, मैं दुखी हूँ, लेकिन पहले से पता था कि यही होगा। अनपेक्षित कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं पूरी मेहनत से अभियान चलाऊंगा, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। आज के नतीजे दिखाते हैं कि हमने पूरी मेहनत नहीं की। ये थे विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के शब्द। डेनमार्क की सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट पार्टी ने बुधवार को हुए आम चुनाव में जीत हासिल कर ली है। पार्टी को 26% से ज्यादा वोट मिले हैं। पार्टी की 41 साल की नेता मेडे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की अगली सबसे युवा प्रधानमंत्री हो सकती हैं। सोशल डेमोक्रेट पार्टी ने इस चुनाव में जलवायु परिवर्तन को मुद्दा बनाया था। चुनाव में प्रधानमंत्री लार्स लुगा रेममोसन की लिबरल पार्टी को महज 24% वोट ही मिल सके। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रवासी मुद्दे पर मैक्सिको से बातचीत में बहुत कम प्रगति हुई है। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि अगर मैक्सिको की सरकार अमेरिका की सीमा पर बड़ी तादाद में आ रहे प्रवासियों और ड्रग्स को तुरंत नहीं रोकती तो वो मैक्सिको के आयात पर 5% का आयात शुल्क लगा देंगे। मैक्सिको के प्रशासन ने उत्तरी सिनलोआ राज्य में 3 सिंथेटिक ड्रग्स लैब पर छापा मारा है और करीब 16 करोड़ डॉलर की कीमत का मेथामफेटामीन ड्रग्स जब्त किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत अभिनंदन। इस कार्यक्रम को आप bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। सूडान में सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच का संघर्ष थमता नहीं नजर आ रहा। देश में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सूडान में अर्धसैनिक बलों के कमांडर ने कहा है कि देश में अराजकता नहीं फैलने दी जाएगी। देश की सेना पर 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की हत्या करने का आरोप है। वहीं सत्ताधारी मिलिट्री काउंसिल के प्रमुख ने विपक्ष के साथ बातचीत बहाल करने की अपील की है, लेकिन विपक्षी कार्यकर्ताओं ने देश की सैन्य परिषद के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि प्रदर्शनकारियों के हिंसक दमन के बाद उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए गुरप्रीत कौर से।
सूडान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच विपक्ष का दावा है कि राजधानी खार्तूम में नील नदी से 40 शव निकाले गए हैं। विपक्षी कार्यकर्ताओं का दावा है कि अर्धसैनिक बलों ने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर हिंसक हमला किया, जिसमें कम से कम 100 लोग मारे गए हैं। इस बीच अर्धसैनिक बलों के कमांडर का कहना है कि देश में अराजकता नहीं फैलने दी जाएगी। सूडान में इस वक्त सेना का शासन है। सत्ताधारी मिलिट्री काउंसिल के डिप्टी चीफ मोहम्मद हमद दागलो ने सेना की कार्रवाई का बचाव किया है और कहा है कि प्रदर्शनकारियों को शरारती तत्वों और ड्रग्स डीलर्स ने भेजा था। मोहम्मद हमद दागलो ने कहा, हम अराजकता नहीं फैलने देंगे और हम अपने दृढ़ निश्चय से पीछे नहीं हटेंगे। पीछे हटने का कोई रास्ता है ही नहीं। हमें कानून के रास्ते पर चलकर लोगों से देश का सम्मान करवाना होगा। ये थे सत्ताधारी मिलिट्री काउंसिल के डिप्टी चीफ मोहम्मद हमद दागलो के शब्द। इससे कुछ घंटे पहले मिलिट्री काउंसिल के प्रमुख ने हत्याओं की माफी मांगी थी और विपक्ष से बातचीत बहाल करने की अपील की थी। हालांकि प्रदर्शनकारियों और विपक्षी समूह के गठबंधन ने बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। गठबंधन के एक प्रमुख सदस्य मुआविया शदाद ने कहा था कि सेना पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने बातचीत बहाल करने के लिए कई शर्तें भी रखी। इस नरसंहार की हर तरह से निंदा की जानी चाहिए। इसकी स्वतंत्र जांच हो और दोषियों को सजा मिले। दूसरी बात, खार्तूम में जो अज्ञात सेनाएं लोगों को डरा रही हैं, उन्हें मार रही हैं, किसी पर भी गोलीबारी कर रही हैं, उन्हें हटाया जाए। जब वो ये सब कर लेंगे तब बातचीत शुरू होगी। ये थे गठबंधन के एक प्रमुख सदस्य मुआविया शदाद के शब्द। प्रदर्शनकारी 6 अप्रैल से सेना के हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। 30 साल सत्ता में रहने के बाद सेना ने राष्ट्रपति उमर अल बशीर को तख्ता पलटकर हटा दिया, जिसके बाद से ही प्रदर्शनकारी सेना के साथ समझौते की कोशिश कर रहे थे कि अब सूडान की सत्ता किसके हाथ होगी। वो सत्ता को नागरिक प्रशासन को हस्तांतरित करने की मांग कर रहे हैं।
नमस्कार भारत शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर सिमट गई। चुनावों से पहले कांग्रेस के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन चुनावों के बाद भी ये सिलसिला जारी है। अब कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सवाल है कि क्या अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने कुनबे को बचाए रखने की है? सुनिए मानसी दास की रिपोर्ट।
चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन कांग्रेस के खेमे से नेताओं के जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका साथ दे रहे हैं कांग्रेस के नेता अब्दुल सत्तार, जिन्होंने ये इशारा किया है कि वो और कांग्रेस के 8 नेता बीजेपी के खेमे में शामिल हो सकते हैं।
कांग्रेस के स्टेट नेताओं से नाराजगी, इनका काम करने का तरीका गलत है। इसके लिए जो राज्य के जितने नेता हैं, इन्होंने कांग्रेस को बर्बाद करने का काम किया है। हम सब 8 से 10 लोग फैसला लेंगे, विखे पाटिल साहब का निर्णय अंतिम निर्णय होगा।
कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने के पीछे क्या एकमात्र वजह लोकसभा चुनावों में करारी हार है? वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी समझाती हैं कि 2014 में ऐसा लगा कि यूपीए सरकार की खामियों के कारण भाजपा सरकार बनी, लेकिन इस बार भी कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरा है और कांग्रेस के लोगों का पार्टी पर आत्मविश्वास भी कम हुआ है।
सतह पे बात हो रही है कि क्योंकि प्रधानमंत्री की मार्केटिंग स्किल्स ज्यादा अच्छी थी, उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत मजबूत था, आरएसएस की बैकिंग थी, उसकी वजह से ये सब हुआ। पर मुझे लगता है कांग्रेस को और गहराई में जाके देखना पड़ेगा।
वहीं वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस के लोगों का अपने नेतृत्व पर भरोसा कम हुआ है। वो कहते हैं कि अधिकांश कांग्रेस नेता जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, उन्हें लगता है कि नेहरू गांधी परिवार का सदस्य ही उनका नेतृत्व कर सकता है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि अब कांग्रेस भाजपा का विकल्प बनने की स्थिति में बिल्कुल नहीं दिखती।
दरअसल अब ऐसा लगता है कि भाजपा का जो एक अल्टरनेटिव है वो भाजपा के अंदर से ही निकलेगा। जैसा पुराने जमाने में 60 के दशकों में और 70 के दशकों में कांग्रेस का विकल्प जो था वो कांग्रेस के भीतर से ही निकला, तो अब देश का मानचित्र में बिल्कुल एक बदलाव आ गया है। अब भाजपा सब जगह है, भाजपा ही भाजपा का एक तरीके का विरोध किसी स्तर पर करेगी।
नीरजा चौधरी भी मानती है कि कांग्रेस को राहुल गांधी का इस्तीफा स्वीकार कर उन्हें और प्रियंका गांधी को पार्टी में कामदार की तरह काम करने देना चाहिए। कांग्रेस की कमियों को वो कुछ इस तरह समझाती हैं।
राहुल गांधी ने जो अपना इस्तीफा दिया है उसको कांग्रेस को मंजूर करना चाहिए और राहुल गांधी प्रियंका को कामदार की तरह पार्टी के अंदर काम करना चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो राहुल गांधी को भी मजबूती मिलेगी, कांग्रेस को भी लॉन्ग टर्म में मजबूती मिलेगी और राहुल गांधी को भी लोग नई नजरों से देखेंगे।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हुए हैं, लेकिन क्या कांग्रेस अपने आप को फिर समेट कर मैदान में उतर पाएगी? क्या वो अपने कुंबे को एक साथ बांध कर रख पाएगी? मौजूदा वक्त में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, लेकिन क्या कांग्रेस इस मुश्किल को पार कर पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मानसी दास, बीबीसी दिल्ली।
कार्यक्रम में आगे आपको सुनाएंगे दुनिया जहान, लेकिन फिलहाल अखबार के पन्ने पलट लेते हैं। गुरप्रीत, आप अखबार के पन्ने पलट चुकी हैं और समझ चुकी हैं कि क्या क्या छपा है, बताइए कि बड़ी खबरें क्या हैं अखबारों
जी। एक खबर जो सभी अखबारों में दिख रही है वो है रोजगार और विकास बढ़ाने के लिए मोदी ने दो पैनल बनाए। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, सभी अखबारों के पहले पन्ने पर दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को निवेश, विकास और रोजगार, कौशल विकास को बढ़ाने के लिए दो कैबिनेट समितियां बनाई हैं। खबर के मुताबिक इसे अर्थव्यवस्था को चुनौती रहे दो अहम मुद्दों से निपटने की नरेंद्र मोदी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर दिख रही है कि एक दलित को पीटकर मारने वाले 13 लोगों को उम्र कैद। मध्य प्रदेश के गुना का ये मामला है। विशेष अदालत ने दलित किसान को पीटकर मारने वाले 13 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और इनमें 12 ऊंची जाति के हैं।
और मैं देख रहा हूँ कि अखबारों में जिस खबर को सबसे बड़ी प्रमुखता दी गई है वो है पहला जो वर्ल्ड कप का इंडिया का मैच था। सारे अखबार भरे पड़े हैं इस हेडलाइन से कि भारत ने किस तरह से अपना पहला मैच वर्ल्ड कप में जीता। इसका जिक्र हम करेंगे कार्यक्रम में थोड़ा सा आगे, लेकिन एक खबर जो मुझे जनसत्ता पर दिखाई दे रही है कि ईद की नमाज के बाद सड़कों पर उतरे पत्थरबाज, और इसमें फोटो भी दिख रही है कि श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर कुछ पत्थर फेंकते हुए युवक नजर आ रहे हैं।
इसके अलावा जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये बोला है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। जी, ये खबर अमर उजाला में है। उन्होंने कहा है कि उनका ये नया नारा है। उनका कहना है कि उन्होंने बीजेपी को चेतावनी दी है कि जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी तेजी से बीजेपी ईवीएम पर कब्जा करेगी उतनी तेजी से वो गायब हो जाएगी।
गद्दाफी स्टेडियम में ईद की नमाज का नेतृत्व नहीं करने दिया गया हाफिज सईद को, और मुंबई हमलों के भारत इनको जिम्मेदार ठहराता है। गद्दाफी स्टेडियम में बुधवार को ईद की नमाज का नेतृत्व उन्हें नहीं करना दिया गया, ये एक अखबार में खबर छपी हुई है।
जी, इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस प्रमुख ने एक अजीब सा टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि मुझे गोली मार दो, ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में है।
क्यों कह रहे हैं ऐसा? वो
ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें हरियाणा में बीजेपी ने सारी सीटें जीत ली और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। तो जो बैठक कल दिल्ली में हुई थी तो इन पर जो आरोप लगे कि आप कोई सीट नहीं दिलवा पाए, उसके बाद इन्होंने झल्लाकर ये कह दिया।
डॉक्टर गलत तो अस्पताल जिम्मेदार, ये कोर्ट का कहना है और नवभारत टाइम्स में ये खबर है कि अगर इलाज में डॉक्टर से लापरवाही हुई तो अस्पताल की भी व्यापक जिम्मेदारी होगी, और इसी तरह अगर डॉक्टर का सहयोग करने वाली टीम से कोई मेडिकल लापरवाही होगी तो डॉक्टर भी जवाबदेह होगा। नेशनल कंज्यूमर फोरम ने एक बच्ची की इलाज के दौरान मौत के मामले में ये फैसला दिया है।
इसके अलावा नीट मेडिकल एग्जाम है जो उसका रिजल्ट आ गया है और 49% बच्चे उसमें क्वालिफाई कर गए हैं।
दिल्ली बेस्ट है उसमें, हर चार में से तीन सफल, और विश्वास नगर जो दिल्ली का इलाका है वहां के जो भाविक हैं वो सेकंड आए हैं।
जी, और मॉनसून के पहुंचने में 15 दिन की देरी, ये दिख रहा है मुझे दैनिक जागरण में।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत अखबारों की समीक्षा करने के लिए। और अब हमारा स्थायी स्तंभ दुनिया जहान। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का गठबंधन नई सरकार बनाने में नाकाम रहा। अब सितंबर में दोबारा चुनाव होंगे, ये पहला मौका है जब इसराइल में एक साल में दो बार चुनाव होंगे। नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि इस बार वो स्पष्ट जीत हासिल करेंगे, वहीं विरोधियों की राय है कि इसराइल में नेतन्याहू युग खत्म होने को है। इसराइल की राजनीति में जारी उथल पुथल में किसके दावे में कितना है दम, दुनिया जहान में वात्सल्य राय ने यही पड़ताल की है।
दुनिया जहान।
हम एक स्पष्ट चुनाव अभियान चलाएंगे जो हमें जीत दिलाएगा, हम जीतेंगे और जनता जीतेगी।
इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के इस ऐलान के पहले देश के नए सांसदों में से 74 संसद भंग करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा चुके थे। उस दिन तारीख थी 29 मई 2019। करीब 6 हफ्ते पहले नेतन्याहू का अंदाज अलग था। उनके लिक्विड पार्टी ने चुनाव में सिर्फ 35 सीटें जीती थीं, लेकिन अपने गठबंधन के भरोसे वो जीत का दावा कर रहे थे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया भर के ऐसे नेता जिनके साथ इसराइल मित्रता का दम भरता है, वो नेतन्याहू को जीत की बधाई दे रहे थे। मीडिया में उनके रिकॉर्ड 5वीं बार इसराइल का प्रधानमंत्री बनने की चर्चा थी। समर्थकों के बीच बीबी नाम से चर्चित नेतन्याहू को जादूगर बताने की भी होड़ थी। इसराइल में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा कहते हैं कि आगे की कहानी नेतन्याहू और उनकी पार्टी की स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं बढ़ी।
अप्रैल 9 के परिणाम सामने आए तो उसके बाद तो यहाँ कहा जाने लगा कि ये वाकई चुनाव के जादूगर हैं और इन्हें चुनावी रणनीति में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। पूरी जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं उनके समूह को 65 सीटें मिली, तो माना जा रहा था कि यकीनन कोई इन्हें परेशानी नहीं होगी सरकार बनाने में, और 65 के 65 ये जो चुनकर लोग आए थे सांसद, इन सभी ने उनके पक्ष में जो है समर्थन का पत्र भी दे दिया। लेकिन किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी भी परिस्थितियां बनेंगी कि ये सरकार का गठन नहीं कर पाएंगे।
120 सदस्यीय इसराइल की संसद में कभी किसी दल को बहुमत नहीं मिला। गठबंधन सरकारें देश की नियति बन चुकी हैं, लेकिन सरकार बनाने का मौका मिलने के बाद कोई नेता गठबंधन तैयार करने में विफल रहा हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 10 साल पहले यानी साल 2009 में नेतन्याहू जब दूसरी बार इसराइल के प्रधानमंत्री बने थे, तब वहां भारत के राजदूत नवतेज सिंह सरना थे। उनका आकलन है कि नेतन्याहू का जादू उतार पर है।
उन्होंने सोचा था कि बाकी कोएलिशन पार्टनर्स उनको मिल जाएंगे, स्थिति वहां पे मुश्किल हुई उनको, इसीलिए उन्होंने सोचा कि बजाय ये कि ऑपोजिशन को चांस मिले सरकार बनाने का, वो फिर से इलेक्शन करेंगे। और ये पहली बार हो रहा है ऐसा 1948 के बाद कि सरकार नहीं बन पाई और दूसरी बार इलेक्शन करना पड़ा। वो तो पक्का लग ही रहा है कि मैजिक तो कम हो गया।
नेतन्याहू पहली बार साल 1996 में प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इसराइल की राजनीति में असल धमक उन्होंने साल 2009 में दोबारा पीएम बनने के बाद दिखाई। कभी कमांडो रहे नेतन्याहू ने अपनी छवि एक ऐसे नेता की गढ़ी जो इसराइल के हितों की रक्षा की गारंटी देता है। भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर बसा इसराइल दुनिया का इकलौता देश है जहां यहूदी बहुसंख्यक है। फलस्तीनी क्षेत्र और ईरान के साथ इसराइल का तनाव अक्सर दुनिया का ध्यान खींचता है। दूसरे अरब देशों के साथ भी इसके रिश्तों के समीकरण बदलते रहे हैं। बीते एक दशक में नेतन्याहू ने देश की चुनौतियों को अपने दक्षिणपंथी गठबंधन के हक में बखूबी इस्तेमाल किया है। फलस्तीन को लेकर उनका रुख सख्त रहा है, सुरक्षा उनकी आला प्राथमिकता रही है। लेकिन 2019 की चुनावी लड़ाई उनके लिए आसान नहीं थी। नई राजनीतिक ताकत बनकर उभरे पूर्व जनरल बेनी गेंज ने उन्हें कड़ी चुनौती दी, उनको सुरक्षा के मुद्दों पर घेरा। नेतन्याहू पर लगते भ्रष्टाचार के आरोपों ने भी विरोधियों के हमलों को धार दी, और जब वो गठबंधन बनाने में नाकाम रहे तो विश्लेषकों को लगा कि विरोधियों ने नेतन्याहू की कमजोर नसों को पहचान लिया है। नवतेज सिंह सरना को सुनिए।
इनके आगे 3 करप्शन केसेस हैं, और ये भी माना जाता है कि एक बारी वो सरकार में आए तो उनकी ये कोशिश रहती कि वो एक इम्यूनिटी लॉ पास करवा दें अपनी कोएलिशन के साथ, ताकि इन पे आगे केस नहीं आगे बढ़ सके।
ऐसी कोशिशों का लोगों ने सड़क पर उतर कर विरोध किया, लेकिन नेतन्याहू की असल दिक्कतें पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लीबरमैन ने बढ़ाई। लीबरमैन एक ऐसे विधेयक के समर्थन की बात कर रहे थे जिसमें रूढ़िवादी युवाओं को सेना में काम करना होता। गठबंधन के बाकी सहयोगी धार्मिक वजहों से इसके विरोध में थे। हरेंद्र मिश्रा की राय है कि लीबरमैन के अड़े रहने का प्रत्यक्ष मकसद चाहे विधेयक रहा हो, लेकिन असल मुद्दा कुछ और था।
इन दोनों का 31 सालों का जो है आपसी निजी संबंध है, साथ काम किया इन्होंने, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि अंदर ही अंदर दोनों के बीच गहरे मतभेद हैं, और इसलिए लीबरमैन जो है वो हमेशा मौके के तलाश में थे कि कैसे वो नेतन्याहू को नीचे गिरा दें, और इसी का ये परिणाम है।
इसराइल के राष्ट्रपति रुबेन रिवलिन किसी अन्य नेता को सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए चुनते, उसके पहले ही नेतन्याहू ने दोबारा चुनाव का दांव चल दिया। जुलाई में वो इसराइल के पहले नेता डेविड बेन गुरिया के सबसे ज्यादा वक्त तक शीर्ष पर रहने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन सितंबर में होने वाले चुनाव में उनकी राह आसान नहीं होगी। हरेंद्र मिश्रा की राय है कि हालिया सर्वे सितंबर के चुनाव में भी ऐसे ही नतीजे आने के संकेत दे रहे हैं।
कई लोगों का ये मानना है सिर्फ नेतन्याहू को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए देश जो है वो बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि 500 मिलियन शेकल्स जो हैं उसका खर्च आएगा, जो यहाँ की करेंसी है, और ये बहुत बड़ी रकम है। इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर। एक तीसरा चुनाव जो है वो ये देश जो है उसके लिए तैयार नहीं होगा।
नेतन्याहू ने सरकार गठन की कोशिश के दौरान विपक्षी खेमे को भी साथ लेने की कोशिश की थी। हरेंद्र मिश्रा के मुताबिक गेंस की पार्टी यूनिटी सरकार के गठन के लिए तैयार होने का संकेत भी दे रही थी, लेकिन उसे नेता के तौर पर नेतन्याहू मंजूर नहीं थे। नेतन्याहू को सरकार गठन के लिए 61 सांसदों का समर्थन चाहिए था, और लीबरमैन का समर्थन नहीं मिलने से उनके पास सिर्फ एक सांसद की कमी रह गई। लीबरमैन को उम्मीद है कि सितंबर में होने वाले चुनाव में उनकी ताकत बढ़ेगी, लेकिन विश्लेषकों का दावा है कि नेतन्याहू आसानी से मैदान नहीं छोड़ेंगे।
देखिए, चुनाव के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक बहुत एक्सपीरियंस्ड और माने हुए पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं। ये पूरे जोर से चाहेंगे स्ट्रैटेजी होगी, वो इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।
नवतेज सिंह सरना की तरह ही हरेंद्र मिश्रा भी मानते हैं कि बीते एक दशक से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसराइल की पहचान के पर्याय बने नेतन्याहू अपनी छवि के सहारे चुनाव लड़ेंगे।
इसराइल की पहचान जो है आजकल उनके नाम से हो रही है। पूरी दुनिया में जितने भी बड़े नेता हैं उनसे उनकी बड़ी अच्छी मित्रता है। वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बार बार जिक्र करते हैं। तो यहाँ जो उन्हें वोट देने वाले जो लोग हैं, उनके जो मतदाता हैं, वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि नेतन्याहू जो है उनकी वजह से विश्व में इसराइल की साख जो है वो जमी है। इसराइल के सुरक्षा हितों का भी वो रखवाली करने में कामयाब रहे हैं। ये बात जो है वो उनके पक्ष में हमेशा जाती रही है।
इसराइल की राजनीति पर नजर रखने वाले दावा करते हैं कि फिसलते ताज को बचाने के लिए वो चुनाव में तमाम ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो देश के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।
सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है, उनके हाथ में बहुत कुछ होगा कि वो इस बारी ज्यादा से ज्यादा वोट्स ले लें। कई तरह के रीजनल मुद्दे सामने आएंगे। एक यूएस ईरान की रिलेशनशिप है, एक यूएस ने जो पीस प्लान बनाया है पैलेस्टीनियन इजराइल टॉक्स के लिए, उसका रोल आउट होगा कुछ ना कुछ उसके पार्ट का। तो ये कई प्लान, कई चीजें हैं जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नेतन्याहू अपनी तरफ बनाने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है कि जो सितंबर में इलेक्शन होगी ये भी बहुत क्लोजली फॉट इलेक्शन है।
इसराइल में बदलाव के हामी और नेतन्याहू के विरोधी भी चाहते हैं कि मुकाबला करीबी रहे। वजह यह है कि वो जानते हैं कि इसराइल का नेता वो शख्स नहीं बनता जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, बल्कि कुर्सी पर काबिज वो होता है जो 61 सांसदों का समर्थन जुटा लेता है। और नेतन्याहू एक बार ऐसा करने में नाकाम रह चुके हैं और यहीं से विरोधियों को बदलाव की एक राह नजर आती है।
दुनिया जहान के बाद अब बात खेल की। वर्ल्ड कप जीत के प्रबल दावेदारों में गिनी जा रही भारतीय टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की है। भारत ने अपने पहले ही मैच में दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हरा दिया। भारत को जीत के लिए 228 रन का लक्ष्य मिला था, जो कि उसने 47 ओवर और 3 गेंदों में 4 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। भारत की ओर से रोहित शर्मा ने नाबाद 122 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। महेंद्र सिंह धोनी ने 34 रन बनाए। भारत की ओर से युजवेंद्र चहल सबसे कामयाब गेंदबाज रहे, उन्होंने 10 ओवर में 51 रन देकर 4 विकेट लिए। वनडे करियर का 50वां मैच खेल रहे जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवरों में 35 रन देकर 2 विकेट लिए। मैच देखकर निकले दर्शकों से बात की बीबीसी संवाददाता शिवा कुमार ने।
इंडिया का ही जोर चल रहा था, सुबह से ही पता चल गया था कि 50 ओवर के बाद इंडिया ही जीतेगा।
50 ओवर से पहले ही पता चल गया था कि हिंदुस्तान ही जीतेगा। 99.9% पॉपुलेशन अंदर हिंदुस्तान की थी। वेरी गुड।
Who is the hero of the match?
रोहित शर्मा।
बहुत मजा आया, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। It was a lovely time.
एक हुआ है, अभी लंबा मंजिल बाकी है और लास्ट तक जुलाई 14 में भी हम मिलेंगे, राइट, विथ कप, वर्ल्ड कप के साथ।
We'll get cup soon. India will win definitely. 2011 now 2019. Thank you very much.
और दूसरा मैच हुआ न्यूजीलैंड व बांग्लादेश के बीच। रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। न्यूजीलैंड ने इस मैच में बांग्लादेश को 2 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को मिले 245 रनों के लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया और न्यूजीलैंड की टीम ने 47.1 ओवर में 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अब आज क्या होने वाला है और बाकी कौन सी खेल की खबरें हैं, सूर्यांशी पांडे से।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको वर्ल्ड कप की गूंज तक लेकर चलते हैं, यानी कि इंग्लैंड के मैदान पर, जहां पर आज ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबला होना है। ऑस्ट्रेलिया का पहला मुकाबला अफगानिस्तान के साथ हुआ था और अफगानिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया था, तो वहीं वेस्ट इंडीज का मुकाबला हुआ था पाकिस्तान के साथ और उनको 7 विकेटों से वेस्ट इंडीज ने भी हरा दिया था। वहीं फ्रेंच ओपन में आज आप विमेन सिंगल्स में जोहाना क्वांटा को चेक की टेनिस खिलाड़ी मार्केटा के साथ सेमीफाइनल के मुकाबले में देखेंगे। मार्केटा ने क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया की खिलाड़ी पेट्रा को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई थी, तो वहीं जोहाना क्वांटा ने स्लोन स्टीफेंस को हराकर अपना क्ले पर अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिया। और बेहतरीन प्रदर्शन तो इंडियन मेंस हॉकी टीम को भी देना होगा FIH सीरीज फाइनल्स में, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन सीरीज फाइनल्स में। ये मुकाबला भारत में भुवनेश्वर में खेला जाएगा। ये मुकाबला 2020 ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन के लिहाज से बेहद अहम मुकाबला है और किस तरह से बेहद अहम है और 2020 ओलंपिक्स क्वालिफायर में क्या भूमिका निभाता है, इस पर बात कर रहे हैं हॉकी एक्सपर्ट हरबिंदर सिंह।
देखिए, अभी ये फर्स्ट राउंड है जिसमें 8 टीम खेल रही हैं और 2 ग्रुप में बांटा गया है। ऐसे ही ये 3 जगह पे टूर्नामेंट हो रहे हैं, डिफरेंट जगह पे, तो इनमें जो फर्स्ट 2 टीम्स होंगी वो क्वालिफाई करेंगी नेक्स्ट राउंड के लिए। तो नेक्स्ट राउंड में टोटल 14 टीम्स होंगी, जैसे मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर में होगा। तो 14 टीम में से जो फर्स्ट 7 टीम होंगी वो क्वालिफाई करेंगी नेक्स्ट ओलंपिक के लिए।
तो ये थे फॉर्मर हॉकी प्लेयर और हॉकी एक्सपर्ट हरबिंदर सिंह। आपको बता दें FIH रैंकिंग की अगर बात करें तो भारतीय हॉकी टीम 5वें स्थान पर है और आज भारत का मुकाबला होगा रूस के साथ। ये मुकाबला शाम को 7 बजे भुवनेश्वर में खेला जाएगा।
और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। सूडान में अर्धसैनिक बलों के कमांडर ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई का बचाव किया है और कहा है कि देश में अराजकता नहीं फैलने दी जाएगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान रूस और चीन के बीच आगे की व्यापार और निवेश डील्स के लिए एक पैकेज पर हस्ताक्षर हुए हैं। थाईलैंड में 5 साल पहले सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व करने वाले शख्स देश के पहले नागरिक प्रधानमंत्री बन गए हैं। रिटायर्ड जनरल प्रायुट चानोचा को संसद के दोनों सदनों में 12 घंटे चली बहस के के बाद हुए मतदान में चुना गया। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे। कार्यक्रम का नाम आप जानते हैं दिन भर। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।